साथ था, रूह वही रूह नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं डॉक्टर पवनेश थाकृति की लिखी कहानी एक फौजी की प्रेम कथा। मुझे भरोसा है अपने इष्ट देव पर, वो एक दिन जरूर वापस आएंगे। कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए अभी उनको पूरे 2.5 साल भी तो नहीं हुए हैं और आर्मी वाले कहते हैं कि गायब हो गए। अरे भाई, ऐसे ही गायब हो जाता है कोई सेना से? राजू की ड्यूटी कश्मीर बॉर्डर में लगे अभी 2 ही महीने तो हुए थे और ऐसी अनहोनी हो गई। पता नहीं कहाँ होंगे वो, जाने किस हाल में होंगे। भगवान करे जहां भी हो बस सुरक्षित हो। 1 हफ्ते से लापता है लेकिन अभी तक कोई खोज खबर ही नहीं। सिपाही को कौन पूछे, कोई नेता अफसर होते तो अमेरिका से भी खोज लाते, गरीब को कौन पूछे। कितनी बार मेजर साहब से कहा, पता लगा दियो साहब, पता लगा दियो हमारे पतिदेव का। साहब जी वो कहते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब कोई मेजर साहब को बता दियो कि अगर कोशिश कर मन लगा कर की जाए तो सफल भी हो जाती है। अब मेरी समझ ना आ रहा कि मत मेरी मारी गई है या इन अफसरन की। अब बेचारे इन अफसरन का क्या दोष, बजर तो हमारी किस्मत में पड़ गया ठहरा। ना राजू का ब्याह हमसे होता और ना ऐसी मनहूस खबर हमें सुनने को मिलती। ये मीडिया वाले भी न जाने क्या क्या अनाप शनाप बकते रहते हैं। कोई कहता है आतंकवादियों के चंगुल में फंस गए, कोई कहता है जंगल में भटक गए, कोई कहता है पाकिस्तानी सेना ने कब्जे में ले लिया, कोई कुछ तो कोई कुछ। जितने चैनल हैं सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। इनको क्या मतलब कि किसी का परिवार उजड़ रहा है, इन्हें तो बस टीआरपी बढ़ाने से मतलब। हम ही जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। कितना प्यार करते थे राजू हमसे, हमें अच्छी तरह से याद है जब पहली बार वो अपने पिताजी के साथ हमारे घर आए थे। शाम का समय था, मैं अपने खाले यानी कि आंगन में ईजा के साथ ओखल कूट रही थी। ये आए और मुझे घूर कर बोले, क्या नाम है तेरा? मैंने कहा, रूपा। अच्छा, तभी इतनी रूपवती हो? मैंने आंखें तरेर के बोला था, बदमाश। बोले, सच कह रहा हूँ, अच्छी लग रही है, ऐसे ही उखल कूटती रहना। अच्छा, मैं उखल कूटती रहूंगी और तू? मैं बॉर्डर में दुश्मनों को कुटूंगा। ले साले और घुसेगा हमारे देश में। ऐसा कहते हुए वह अपने दोनों हाथों से दुश्मनों को मारने की एक्टिंग करने लगा। उसको ऐसा करते देख इजा बोली, देख चेली, बड़ा होके राजू फौजी बनेगा, तब तेरा ब्याह कर देंगे इसके साथ। बोल राजू, करेगा रूपा से ब्याह? राजू खुश होकर बोला था, हाँ काकी। उसके ऐसा कहते ही मैं शर्मा कर भीतर भाग गई थी। उस समय राजू की उम्र 13 साल की थी और मेरी 12 साल की। वो कक्षा 8 में पढ़ते थे और मैं कक्षा 7 में। इस पहली मुलाकात के बाद राजू हर महीने 2 महीने में किसी न किसी बहाने से हमारे घर आया करते थे। उनके साथ उनका दगड़ू यानी कि दोस्त अंठी भी आया करता था। दोनों कभी हमारे यहाँ से पालंग के बीज ले जाते तो कभी घौत की दाल। अंठी का असली नाम अंगद था, लेकिन अंठी कंचे खेलने में माहिर होने और चंट होने के कारण सभी लोग उसे अंठी कह के ही पुकारते थे। अंठी शरारत के मामले में राजू से भी 2 अंगुल आगे था। बसंत ऋतु शुरू हो चुकी थी, उस दिन फूलदेई का त्योहार था। राजू, अंठी और उनके 10-12 दगड़ू हमारे घर आए और घर की दली में फूल डालकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, फूल दे, छम्मा दे, दैड़ी द्वार भर भकार। ईजा ने सबके झोले में चावल, गुड़, माल्टा और 5-5 रुपए भेंट डाली। जब ईजा भीतर चली गई तो अंठी राजू से बोले, ए राजू, भाभी का फूल? राजू झोले से एक गुलाब का फूल निकाल कर दहली पे रखते हुए बोले, ये तेरे लिए, मैं गुस्से से बोली। बदमाश, मैं आगे कुछ कहती तब तक सब फूल देई चम्मा चम्मा देई करते हुए वहां से रफू चक्कर हो गए। ऐसी ही शरारत इन लोगों ने होली के टाइम में भी की थी। गांव में जहां तहां होली की धूम मची थी, होलियारों की टोलियां होली गायन में व्यस्त थीं। कहीं जोगी आयो शहर में व्यापारी की आवाज आती तो कहीं से बलुमा घर आवे फागुन में। पूरे गांव का माहौल होली के रंग में रंग चुका था। हमारे घर के आंगन में भी होली की टोली आई ठहरी। टोली के साथ राजू, अंठी और उनके बहुत सारे दगड़ू भी आए ठहरे। मैं खिड़की से बाहर झांक कर होली का आनंद ले रही थी, तभी अंठी आए और बोले, भौजी बिहार आओ, होली खेलते हैं। हमने कहा, चुप, नहीं खेलनी हमें होली। तभी राजू वहां आए, पीछे से आकर हमारे चेहरे पर गुलाल मल दिए और खुश होकर चिल्लाने लगे, होली है, होली है। हमने गुस्से में कहा, क्यों अंटी से भौजी कहलवा रहे हो, जब बड़े होके हमारी शादी ही नहीं होनी। राजू बोले, क्यों नहीं होगी शादी, शादी होगी और तुमसे ही होगी। ये देखो प्यार का रंग लगा दिया हमने तुम्हारे चेहरे पर। हम शर्मा गए थे, बोले, अब लगाओगे तो ईजा से शिकायत कर देंगे। ऐसा कहते ही राजू कमरे से बाहर चले गए। हमारी हंसते हंसते हालत खराब। आठवीं पास कर जब हम गांव के इंटर कॉलेज में पढ़ने गए, तब राजू उसी कॉलेज की दसवीं में छात्र। कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वे सदा बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त। उन्हें एक गीत मैंने हमेशा गाते हुए देखा था,
कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं अभी लड़ूंगा, कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं अभी लड़ूंगा, न होए उदास प्यारी दीदी घर योला, न होए उदास प्यारी दीदी घर योला।
मतलब, हे प्रिय कश्मीरी बॉर्डर, मैं स्वयं लड़ाई लड़ूंगा, तू उदास मत होना, मैं बाद में छुट्टी लेकर घर आऊंगा। उनकी आवाज में एक टीस थी जो उनकी गायकी में भी झलकती थी। राजू को गाने के अलावा बंसी बजाने का भी शौक था। जब वो अपने गगड़ुओं के साथ ग्वाले आते थे तो उनकी बंसी की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी। बंशी में भी वो अपने प्रिय पहाड़ी गीत की धुन कई बार छेड़ते थे। ऐसा लगता था जैसे वो ये गीत मेरे लिए ही गाते होंगे। उनकी बंशी की आवाज़ सुनकर ही गोपाल बाबू गोस्वामी जी का ये गीत मेरा प्रिय गीत बन गया, कैले बजे मुरली ओ वेणा।
कैले बजे मुरली वेणा, ऊंची ऊंची डालू मा, गिरी है काले जी मेरी, वो देख मान मा।
मतलब, ओ बहन, इन ऊंची नीची पहाड़ियों पर मुरली किसने बजाई, तुझे देखकर मेरे हृदय में बड़ी तीस पहुंचती है। ओ राजू, कहाँ हो तुम, लौट आओ ना जल्दी। ओ राजू, कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, लौट आओ ना। तुम्हें पता है, जब से तुम गायब हो, ना तो मुझे भूख लगती है और ना नींद ही आती है। ओह, भूख और नींद से याद आया, कॉलेज के दिनों में तुम किसी बात पे मुझसे रूठ गए थे और बोले थे, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। और पता है, मैंने तुम्हारी बात सच मान ली थी। उस रात ना तो मैंने खाना खाया और ना रात भर मैं सो पाई। ईजा दो बार मेरे लिए खाना लाई, मैंने दोनों बार यह कह के लौटा दिया कि मुझे भूख नहीं है। तुमको क्या पता मेरी दशा के बारे में, तुम तो पूरे हफ्ते भर मुझसे नहीं बोले और ना मेरी तरफ एक बार भी देखा, आग लगाई और खिसक लिए। प्रेम में ऐसा करते हैं पुरुष, न जाने किस मिट्टी के बने होते हैं। दिल नाम की कोई चीज भी नहीं होती, या होती है। खैर, आठवें दिन तुमने मुझसे माफी मांगी, शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुम्हें फौज में भर्ती होने का ऐसा जुनून था कि दो दो टाइम तुम दौड़ते रहते, सासू माँ ने मुझे बताया था कि सुबह 4 बजे उठकर तुम गांव के ऊबड़ खाबड़ रास्ते में होते हुए 3 किलोमीटर दूर सड़क पे पहुंच जाते थे और वहां भी सड़क ही सड़क टूनी की धार तक दौड़ते रहते। बच्चू बाबू बताते थे कि कोई और भर्ती हो ना हो लेकिन भोपाल का लड़का भर्ती जरूर होगा। भोपाल यानी मेरे ससुर जी। ससुर जी हमारे वैसे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन जब दारू पी के आते हैं तो हमारा जीना हराम कर देते हैं। सासू माँ और मुझे किसी तरह उनके मुंह में रुमाल बांधकर उन्हें उल्टा लिटाना पड़ता है। कितनी बार समझाया पिताजी दारू ना पियो लेकिन सुने तो किसी की। मैं तो कहती हूँ भगवान बचाए इन दारूबाजों से। मैं भी ना कहाँ से कहाँ पहुँच। हाँ तो मैं बात बता रही थी कि राजू की भर्ती की तैयारी के बारे में। भर्ती के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी। हाई स्कूल पास करते ही वे तैयारी में जुट गए थे। एक दिन की बात है वो ग्वाले आए हुए थे और संयोग से मैं भी उसी दिन रेखा और नीलू के साथ बकरियां चराने गई हुई थी। वो एक महल के पेड़ के नीचे बैठकर बंशी बजा रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने पास आने का इशारा किया। मैं लजाती हुई उनके पास जाकर बैठ गई। वे मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाता, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? मैंने जवाब दिया, ना। बोले, तब तो ठीक है, मुझे लगता था तुम्हें बुरा लगता होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता बुरा, मैंने बात दोहराई। अच्छा है, काफी समझदार हो तुम। तुम्हें तो पता ही है मुझे जल्द से जल्द भर्ती होना है, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा। तुम भर्ती ही क्यों होना चाहते हो? देश के लिए कुछ तो तुम शिक्षक बनकर भी कर सकते हो, डॉक्टर बनकर भी कर सकते हो। अरे पगली, मैं बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाना चाहता हूँ। अच्छा, और अगर दुश्मनों ने तुम्हारे छक्के छुड़ा दिए तो मैं हंसते हंसते देश के लिए जान दे दूंगा। देश के लिए जान देने का सौभाग्य तो नसीब वालों को मिलता है। उनकी ये बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक आए थे। देश से इतना प्रेम और हमसे, तुमसे तो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं, ऐसा कहकर वे हंसने लगे। अगर होता तो क्या हमसे एक बार भी नहीं कहते? वो बोले, अच्छा बाबा, करते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए ही तो सब कर रहे हैं, जल्दी भर्ती होकर तुमसे शादी कर लेंगे। मेरी आंखों से और तेज आंसू ढुलकने लगे। तब वो अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर बोले, रो नहीं बच्ची, देख तेरे लिए क्या लाया हूँ, रेखा और नीलू को भी देना। ये बातें शायद रेखा और नीलू ने भी सुन ली थी, तभी तो पेड़ की ओट से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। राजू मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं या देश से, ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। अगर मैं कहूँ कि वो देश से ज्यादा प्यार करते हैं तो ऐसा भी कैसे कहूँ? कई बार उन्होंने मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। एक बार की बात है, तब वो इंटर में पढ़ते थे, 11वीं कक्षा के एक लड़के ने रास्ते में मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे छेड़ने लगा। मैं हाथ छुड़ाने का भरसक प्रयास कर रही थी लेकिन वो इतना हट्टा कट्टा लड़का था कि उसके सामने मेरी एक नहीं चली। पता नहीं कैसे इन तक खबर पहुंच गई और ये दौड़ते हुए आए। उस लड़के को इतना पीटा कि दूसरे दिन वह मुझे बहन कह के पुकारने लगा। अब ऐसे में मैं कैसे कह दूं कि ये मुझे कम देश से ज्यादा प्यार करते हैं? और यदि मैं कहूं कि वो मुझे ज्यादा और देश से कम प्यार करते हैं तो ऐसा भी कैसे कहूं? एक बार की बात है, तब हमारी शादी हो चुकी थी। मैं घर में ज्वर से पीड़ित थी और इनके लिए लेटर आया कि तुमको इसी वक्त कश्मीर जाना होगा। ये मुझे ज्वर में तड़पता छोड़ बॉर्डर पे चल दिए। वो तो अच्छा हुआ ससुर जी की लाई दवाइयां असर कर गईं, वरना न जाने क्या होता। इंटर करने के 1 साल बाद ही राजू फौज में भर्ती हो गए थे। इनके 2 महीने बाद ही इनका दगड़ू अंठी भी CRPF में भर्ती हो गया। और भर्ती होने के एक साल बाद ही इन्होंने मुझसे शादी कर ली। हमारी शादी भी क्या अनकसी माने अजीब थी। जाड़े के दिनों शादी की ठहरी, इतनी बारिश हुई कि सब बाराती भीग कर रुंझुन हो गए। शादी के दिन ही मैंने इनसे एक वादा भी लिया कि मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होने देंगे। इन्होंने भरोसा भी दिलाया, नहीं होने दूंगा, ड्यूटी से भी दिन में दो दो बार फ़ोन ज़रूर करूंगा, और करते भी थे। लेकिन पिछले 7-8 दिनों से इनका ना तो कोई फ़ोन आया ना कोई खबर। ईजा बाबू का रो रो के बुरा हाल है। एक ही तो सहारा था उनका, वो भी इतने दिनों से पता नहीं किस हाल में है। राजू की पत्नी को राजू फौजी का इंतजार करते 10 दिन हो गए थे, आज 11वां दिन है। रूपा को अब भी पूरा भरोसा है कि उसका पति ज़रूर आएगा। शाम को कुछ फौजी ताबूत कंधे पे उठाए उसके घर आए। फौजियों के पीछे गांव वालों की लंबी कतार थी। उन्होंने ताबूत रूपा के घर के आंगन में रख दिया। रूपा दौड़ती हुई कमरे से बाहर आई और ताबूत के एक छोर से जो ही तिरंगा उसने हटाया, उसके मुंह से चीत्कार निकल गई, राजू 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 राजू। ऐसा कहते ही वह बेसुध होकर गिर पड़ी। आज राजू ने बता दिया कि एक फौजी को सबसे ज्यादा अपने वतन से प्यार होता है। राजू को पता लगाने वाले ऑफिसर्स का कहना था कि राजू के सीने में कुल 12 गोलियां लगी थी। जंगल के जिस बीहड़ स्थान पर उसकी लाश मिली थी, उसके पास ही 4 आतंकवादियों की लाशें भी मिली थी। यानी राजू ने 4 आतंकवादियों को ढेर करने के बाद देश के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पवनेश ठकुराठी की लिखी कहानी एक फौजी की प्रेम कथा। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया पूजा श्रीवास्तव।